आज के 63 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र में भगवान शंकराचार्य ये बता रहे हैं, यदि जीव है तो जगत है। कोई भी भोग्य पदार्थ भोक्ता की दृष्टि से है। यदि भोक्ता नहीं तो भोग्य पदार्थ का कोई महत्व नहीं। विषयों का महत्व जीवन में तब बढ़ जाता है जब आदमी की वासनाएं बढ़ती हैं। यहां पर दृष्टांत देते हैं कि मनुष्य को तत्व की दृष्टि कैसी करनी चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे आप कुछ चीज भागवत सुन रहे हैं अथवा अपरोक्ष अनुभूति सुन रहे हैं और आप उसको नेट पे सुन रहे हैं, तो आप उसकी आवाज अपने अनुकूल कर सकते हैं, बीच में बंद भी कर सकते हैं। अध्यात्म को आप अपने अनुकूल बनाते हैं, लेकिन जब प्रेमपुरी आश्रम में आप आते हैं तो आपको अध्यात्म के अनुकूल बनना पड़ता है। तो अध्यात्म को अपने अनुकूल बनाना और अध्यात्म के अनुकूल स्वयं बनना, जब आप अध्यात्म के अनुकूल बनते हैं उस समय आपका जीवन साधन संपन्न होता है। और जब आप अध्यात्म को अपने अनुकूल बनाते हैं उस समय अध्यात्म भी एक भोग का हिस्सा होता है। जैसे अन्य भोग्य पदार्थ हैं, जैसे आप रेडियो के गाने सुनते हैं, टीवी पे न्यूज देखते हैं, इसी प्रकार वो भी एक आपके मनोरंजन का साधन हो गया। लेकिन जब आप इसके अनुकूल चलते हैं तब ये मनोरंजन का साधन नहीं होता, तब ये मनोभंजन का साधन होता है। और जब ये मनोभंजन का साधन होता है उस समय ये सत्य की उपलब्धि का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। जब आप यहां प्रवेश करते हैं आपके परमाणुओं में परिवर्तन आ जाता है, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है, आपके विचारों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अध्यात्म के अनुकूल आपको बनना है। यहां अध्यात्म को आपको अपने अनुकूल नहीं बनाना है। इसलिए श्रुति में जो आज्ञा दी है वो आज्ञा ये दी है कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभि गच्छेत। गच्छेत शब्द का अर्थ होता है जावे। ये विधि है। ये जब आप जाओगे तब आपको उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, जीवन को उसके अनुकूल ढालना पड़ेगा। और अध्यात्म के अनुकूल जीवन को ढालना ये जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब यहां पर जरा बता रहे हैं, सुनिए 63 नंबर का श्लोक है। यथा तरंग कल्लोलै जलमेव स्फुरत्यलम् पात्र रूपेण ताम्रम ही ब्रह्मांडौघै तथात्मता। बड़ा सुंदर दृष्टांत आपने देखा कभी? बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, 94 के आसपास की बात। पुणे में कभी सायंकाल को बारिश होती है, बड़ी महीन महीन बूंदें गिरती हैं। आपने कभी अनुभव किया? लोनावाला में मोटे मोटी बूंदें गिरती। यथा तरंग कल्लोलई, कभी आपने केदारनाथ की बारिश देखी होगी? एक बार यहाँ 26 जुलाई की बारिश का याद होगा आपको। वो क्या है? शंकराचार्य कहते हैं वो पानी के ही रूप है। यथा तरंग कल्लोलई जलमेव स्फुरति, जल के सिवाय और कुछ नहीं। तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो 26 जुलाई की बारिश और सुबह सभी कभी फुहारे से नहाते हैं गर्मी के समय पे, ठंडी ठंडी पानी की बूंदें गिरती हैं, उन दोनों में तत्व रूप से कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब केदारनाथ की बाढ़ देखते हैं तो हृदय कांप जाता है और छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन खेल तो सब किसका है? आप अपने जीवन में मानो सुनार हो, वो नहीं लेकिन मानो थोड़ा देर, माना ही हुआ है सब, हो तो तुम कुछ नहीं, सब माना ही है बस। और तुम्हारे पास में कोई एक सोने का गणेश और एक सोने का चूहा ले आया, तुम हाथ किसके सामने जोड़ते हो, गणेश के सामने कि चूहे के सामने? गणेश के सामने। चूहा हो 1.5 किलो का और गणेश जी हो पाव भर के, तुमको कोई बोले भाई इनमें दोनों में से एक चीज लो तो किसको लोगे? गणेश जी का लोगे कि चूहे का लोगे? क्यों? क्योंकि दृष्टि तत्व के ऊपर है, सोना होना नहीं, दृष्टि तत्व के ऊपर है। बस जनक से अष्टावक्र ने कहा, जब अष्टावक्र सभा में पहुंचते हैं, जनक ने कहा कि ये राजन इन चमारों के बीच में बैठ के तुम सत्य का निर्णय करना चाहते हो? ये चमार सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। सत्य का निर्णय तो वो व्यक्ति कर पाएगा जिसकी दृष्टि तत्व पे होगी। दृष्टि तत्व पे होनी चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं यथा तरंग कल्लोलई, निकलती हुई तरंगे चाहे गंगा की हो चाहे जमुना की हो, जब वो कभी अपना विकराल रूप करती हैं, कभी हम आपको बताते हैं वही कृष्ण है जिसके साथ अर्जुन एक पग चलने के लिए तड़पता है, जिसके साथ खाने के लिए तरसता है, जिसके साथ घूमने के लिए तरसता है, उसी कृष्ण ने जब अपना रूप दिखाया अर्जुन को तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते होंगे, भीता भीता प्रणम्य। जिस आदमी का हाथ पकड़ने में आनंद आता हो, जिस आदमी से मजाक करते समय मजा आता हो, जिस कृष्ण को उन्होंने कहा बुद्धिम मोय यसीब में, अर्जुन का कृष्ण के प्रति इतना गहरा प्रेम था, शायद प्रेम के अलावा कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। कृष्ण की इतनी गरिमा है और कृष्ण को अर्जुन ये कहता है, व्या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसीव मे। व्यामिश्रित किसको बोलते हैं? व्यामिश्रित वाक्य बड़ा बुरा है संस्कृत में, दोगलापन। ऐसे वाक्यों को बोल के तुम मेरे को मुंह में डाल रहे हो। लेकिन जब वो कृष्ण के साथ में रहते 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 ये यात्रा 18वें अध्याय पे पहुंचती है, 18वें अध्याय में कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मया च्युता। आप विचार करो, पहले वो कृष्ण को अपने अनुकूल बना रहा था, आपने कभी सोचा नहीं होगा कभी ये बात। पहले अध्याय में सारे तर्क वो ऐसा दे रहा था कि कृष्ण मेरे जैसा सोचें, कृष्ण मेरे जैसा करें, और हमारे जो महात्मा हैं, जो तत्वों के चिंतक हैं, जिन्होंने तत्वों को जाना है, विद्यारण्य स्वामी जी हैं, मधुसूदन सरस्वती जी हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, जिन्होंने जाना, वो लोग ये कहते हैं गीता का पहला अध्याय पूर्व पक्ष है। और आप ध्यान से पढ़िएगा कभी राम सुखदास जी महाराज की गीता, तो आपको लगेगा साधक संजीवनी कि पहले अध्याय में आपको लगेगा कि अर्जुन सही बोल रहा है। पतंती पितरो हे साम लुप्त पुंडो दग क्रिया, ऐसा लगेगा आपको कि अर्जुन सही बोल रहा है। और जब आप सही होते हैं तो सामने वाले को कन्विंस करते हैं आप कि सामने वाला मेरे अनुसार चले। लेकिन कृष्ण जैसा व्यक्ति ही सुन सकता है। एक आदमी कह रहा था शादी करने के बाद एक फायदा हुआ महाराज। मैंने कहा क्या फायदा? सुनने की आदत पड़ गई। हमने कहा इसलिए कृष्ण ने इतनी शादियां की थी। उसको इसलिए सा सुनने की बहुत आदत थी। चुप। अर्जुन ने क्या क्या उठपटांग बोला उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात नहीं बोली। और बोलना भी शुरू तब करता है जब अर्जुन द्वितीय अध्याय के सातवें श्लोक में ये कहता है शिष्यस्ते हम। इससे भी राजी नहीं है कृष्ण। आगे कहता है सादी माम त्वाम प्रपन्नम। सादी शब्द है वो, सादी असली में सादी भी उसी से बनता है, लोगों को पता नहीं है। वो शा धातु शासन अर्थ में है। आपकी सादी हो गई फिर आपके ऊपर किसी का अनुशासन शुरू हो गया, आप स्वतंत्र नहीं रहे। कृष्ण अर्जुन कहता है हे कृष्ण अब मेरे ऊपर आप अनुशासन करें क्योंकि मैं प्रपन्न हूं। और आप पढ़ते हैं श्लोक बड़ा प्यारा सा, प्रपन्न पारी जाता है। प्रपन्न व्यक्ति के लिए कृष्ण पारी जात है। जो शरणागति गया है उसके लिए वो कल्प वृक्ष है, जो शरणागति में नहीं गया उसके लिए कल्प वृक्ष नहीं। जीवन को बदलना जरूरी है बाहर को बदलने की अपेक्षा। तो कहते हैं तत्व की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं आपको कि कहां वो कृष्ण जिसकी उंगली पकड़ के वो चलता है, कहां वो कृष्ण जिसके साथ वो मजाक करता है, और कहां वो कृष्ण जिसके सामने नमस्कार करने में भी डर लगता है, कहाँ वो कृष्ण जिसको वो कहता है कि तुम मेरे को मोह में डाल रहे हो, और कहाँ वो कृष्ण जिसके चरणों में बैठ के वो ये कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लगता है। तत्व की दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। इसी प्रकार से बता रहे हैं, देख लो, यथा तरंग कल्लोलई, तरंगों के अंदर, चाहे वो केदारनाथ की बाढ़ हो, चाहे झुरमुट बरसती हुई बरसात हो, जल के सिवाय कुछ नहीं। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी में बताया, इन बादलों में लाखों टन पानी होता है, और हवा उस लाखों टन पानी को ऐसे उड़ा के ले जाती है। पहले हम भी नहीं समझते थे, तुम अभी भी नहीं समझते, कहीं बादल फट जाता है तो जमीन 30 फुट तक अंदर दब जाती है। उस बादल में इतनी ताकत है, इतना पानी है, लेकिन हवाएं उनको ऐसे ही उड़ा करके ले जाती हैं। जल के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यथा तरंग कल्लोलई जलमेव स्फुरति, जल के सिवाय कुछ है नहीं वहां। कृष्ण तो तत्व है, मैंने आपको बताया, कृष्ण ने कहा परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ, महाभारत का है, भागवत तेरा पुराण है, उसमें गप सप है थोड़ी बहुत, बुरा नहीं मानना, महाभारत इतिहास है, इतिहास इति ऐसा हुआ। युधिष्ठिर भी बैठे, भी बैठे, युधिष्ठिर कौन है? धर्म। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें अधर्म ना होता हो, आप ये ध्यान रखना। यदि मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो तो कितने कीड़े मरते हैं, यदि आप हवन करते हो तो कितने कीड़े मरते हैं, इसलिए जैन मुनि कभी पानी नहीं पीते ऐसा, क्योंकि पानी पिएंगे तो वो मार के ही पानी पीते हैं। इसलिए बैठे धर्म, मैंने कहने का मतलब धर्म में कहीं ना कहीं अधर्म है, कुछ ना कुछ हिंसा है उसमें। कृष्ण भी बैठे हैं, दो प्रकार की बातें आती हैं। अर्जुन भी जब उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही, वो जो वो बात मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन एक बात ऐसी भी आती है, कृष्ण ने युधिष्ठिर की तरफ देख के कहा, यदि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा तो बालक पैदा खड़ा हो गया। और कहते हैं परीक्षित के ऊंट फड़फड़ाने लगे, युधिष्ठिर कृष्ण की तरफ देखने लगे, उन्होंने कहा ये आदमी तो जिंदगी भर झूठी बोलता था। मैया मोरी में माखन खाए, वहां से लेके और द्रोणाचार्य की मौत तक, लेकिन कृष्ण को हमने बाहर से देखा, कभी कृष्ण को अंदर से नहीं समझा। कृष्ण को जो तुम समझते हो वो कृष्ण के बारे में बोलते हो, लेकिन कृष्ण स्वयं क्या है ये तुम नहीं समझ सकते हो। दुर्वासा स्वयं क्या है आपको मालूम है? गोपियों ने दुर्वासा को खिलाया द्वादशी को, उन्होंने कहा जमुना मैया तो रास्ता नहीं दे रही। उन्होंने कहा तुम जमुना मैया से कहो, मैया यदि दुर्वासा ने ना खाया हो तो इन्हें रास्ता दे दो। जमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियां हैरान परेशान, अभी तो हम माल खिला के आ रही हैं इसको, कुदरत भी झूठे का साथ दे रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं दुर्वासा की आत्मस्थिति है, उस आत्मा में स्थिति है जो आत्मा न कभी खाती है न कभी पीती है, उस आत्मा को वो अपना स्वरूप समझते हैं। और हम अपना स्वरूप वो समझते हैं जो शरीर है, जो खाता है पीता है हंसता है गाता है, इसके साथ में हमारा तादात्म्य है और उसका तादात्म्य उससे। इसलिए कृष्ण जिस आत्मा में स्थित है वही बोल सकते हैं हत्वापि सैमान लोकान नहंति न निबद्धते, दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता, दूसरे व्यक्ति में इतना साहस नहीं है। इसलिए बोलते हैं जिस प्रकार से जल के सिवाय कुछ ये जल ही का स्फूर्ण होता है, इसी प्रकार इन आंखों से देखता है तो उस आत्मा का ही स्फूर्ण होता है, इन कानों से सुनता है तो आत्मा का ही स्मरण होता है, इन पांव से चलता है तो आत्मा का, क्योंकि सब ये कोई बात कल्पना नहीं है। शंकराचार्य सत्य की इतनी गहराई में पहुंचे हुए हैं कि हम जीवन भर असत्य में उलझे हुए लोग उतने गहरे सत्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं खाता हूं, तो किसकी स्पूर्णा हो रही है? मैं की हो रही है ना, मैं खाता हूं। उसके लिए याज्ञवल्क ने जो मैत्री से कहा ना, उसने कहा कितना धन दौलत शौहरत सब मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। उसने इतना सुंदर उत्तर दिया, दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी को इतनी साफ बात नहीं करता। उसने कहा देख मैत्री तेरे को एक बात बताता हूं, यथा उपकरण बताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात्। मैं तेरे को करोड़ रुपए लाके दे दूं तू सुखी हो जाएगी? नहीं सोचना। यदि तुम अपने पति से प्रेम करते हो पत्नी से प्रेम करते हो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, जब सूर्य अस्ताचल को जाता है उस समय उन पैसों को तुम नहीं देखते, पति का रास्ता देखते। उसने कहा यथा उपकरण बताम जीवितम, क्या उपनिषद की बात है, जैसे कोई व्यक्ति 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा हो और उसको कैंसर की बीमारी है, कीमो कराने के लिए जा रहा है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास में हैं, नर्स पास में बैठी है, लेकिन आखिरकार प्रारब्ध कौन होगा? उपकरण से तो संपन्न है वो, जो साधन आपको दिए हैं वो सीमित काल के लिए दिए हैं। बचपन यदि आपको नियत काल तक दिया तो जवानी भी आपको नियत काल तक दी है, बुढ़ापा भी नियत काल तक दिया है, लेकिन जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो कहते हैं एक ही की पूर्णा हो रही है, बुढ़ापे का अनुभव भी वही कर रहा है। बाचस्पति मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूं, वो कहते हैं यो हम बाल्ये पितृन अनुभवम सैव स्थिविरे प्रणतृन अनुभवामि इति प्रतिसंधानम मा भवे। यदि आत्मा एक न होती, यदि आत्मा अजर और अमर न होती, तो मैं कभी बैठ के ये नहीं कहता कि मैं तो वही हूँ जो कभी अपने बाप की उंगली पकड़ के चलता था, आज मेरा पोता मेरी उंगली पकड़ के चलता है, मैं वही हूँ। ये जो बात कर रहा है, मैं वही हूँ जो बाप की उंगली पकड़ के चलता था और प्रणत्रीन अनुभवामि, प्रणत्री बोलते हैं पोते के लिए, वही मैं हूं कि मेरा पोता मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है। शरीर की दृष्टि से देखो तो जमीन आसमान का भेद है, लेकिन कहीं आत्मा की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो उसी का एहसास होता है, उसके सिवाय दूसरे का एहसास होता ही नहीं है, बाद बाकी दूसरी चीजों का बाद हो जाता है। इसी प्रकार शंकराचार्य बोलते हैं पात्र रूपेण ताम्रम ही, उसी प्रकार से तांबे का बना हुआ घड़ा, तांबे का बना हुआ दिया, तांबे का बना हुआ लोटा, तांबे के सिवाय कुछ नहीं, उसी प्रकार से ये आत्मा है। 63 हो गए, 64 नंबर का सूत्र घट नामना यथा पृथ्वी पट नामना ही तंतवाह जगन नामना चिदा भाती गेयम तत्त भावता। बहुत गहरा श्लोक है शंकराचार्य का। ये एक पुस्तक है वेदांत परिभाषा, परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन, वेदांत की परिभाषा डेफिनेशन क्या देते हैं, वहां उन्होंने एक श्लोक लिखा, वेदांति की परिभाषा नहीं लेकिन जो उन्होंने वहां लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, यदा विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तमनोमी परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। भूत भौतिक सृष्टया, भूत भौतिक, पहले पृथ्वी बनाई, जल बनाया, तेज बनाया, वायु बनाई, आकाश बनाई, इसको बोलते हैं भूत, इसको क्या बोलते हैं, और फिर इनसे जो बनेगा उसको बोलते हैं भौतिक। अविद्या के विलास से पहले भूत बनाया और भूतों से भौतिक, जैसे बोलते हैं ना वसुदेव, मैंने श्री कृष्ण के पिताश्री, और वासुदेव मैंने श्री कृष्ण, वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः, अपत्य अर्थ में अनपत्य हो रखा है। ऐसी भूतों से जो बनता है उसको भौतिक बोलते हैं। है तो साहित्य का पुस्तक और मैंने कभी दृष्टांत भी दिया आपको, साहित्य पुस्तक नैषद महाकाव्य है, वो हर्ष का है, नल और दमयंती का चरित्र का उसमें वर्णन किया गया है, जीवन में दुख क्या होते हैं, जीवन में सुख क्या होते हैं, यदि पढ़ना है कभी तो नैषद पढ़ के देखो, कितना दुख और कितना सुख, कितनी विपरीतता और कितनी अनुकूलता, लोभ में रिश्ते कैसे टूटते हैं और कैसे बनते हैं, यदि देखना है तो नल और दमयंती का चरित्र देखिए। वो लिखता है वहां पे दो चीज उसने स्वीकार की, एक तो उसने कहा सृष्टा ने जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनाया है वो तो क्या बनाया मालूम, हथियार किसके लिए बनाया जाता है, हत्या करने के लिए, तो काम हतम जगत समस्तम, लेकिन सृष्टा ने जो हत्या करने के लिए बनाया, उसी से सृष्टा ने जीवन का विस्तार भी किया। काम नहीं होगा तो जीवन का विस्तार नहीं होगा। कब काम अभिशाप है, कब काम वरदान है, इसका निर्णय आपको अपने विवेक से करना है, समझदारी से करना है। उन्होंने जो दृष्टांत दिया वो मैं आपको देना चाहता हूं, शायद ऐसे दृष्टांत आपको कहीं मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा स्मरक तनुक्षायतया पुरात्मना न शक्यते लंघयितुम नल। नल के पास में जो रथ चलाने की कला थी बड़ी तेजस्वी कला थी, बहुत तेज रथ चलाता था। दमयंती के स्वयंवर में कैसे पहुंचते हैं भी कहानी पढ़ो आप, कहानी बड़ी अच्छी। लेकिन कितनी भी तेज रथ चलाए वो अपनी छाया का उल्लंघन नहीं कर सकता, कितनी भी तेज चलाओ आप। इसी प्रकार से आप जीवन में कभी काम का उल्लंघन नहीं कर सकते। स्मरह मैंने काम, तनुक्षाया तो शरीर की छाया है, जैसे काया से छाया अलग नहीं होती, ऐसे ही का उपयोग आपको अपने विवेक से करना है। फिर भौतिक सृष्टि, मैंने कभी आपको बताया है एक मोगरे का फूल जब आप सूंघते हैं, मैं पहले एक जगह रहता था कुटिया में, महात्मा और रहता था हमारे साथ में, बड़ा अच्छा महात्मा था, वो खाता पीता नहीं, इसलिए हमको भी अच्छा लगता था। तुम्हारे को भी ऐसे आदमी मिल जाए जो खाए पिए नहीं तुमको अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन उसने बगीचा बड़ा अच्छा लगाया, मोगरे के फूल इतनी सुगंध आती थी। पुणे में रहता था, पुणे में वो खिलते हैं मोगरे गर्मी के समय, जैसी जैसी गर्मी पड़ती है मोगरे के फूल खिलते हैं उनमें सुगंध आती है। कितनी गर्मी में जब वो तपता है और उसके नीचे हम यूरिया डालते थे, यूरिया डालते हैं, यूरिया की खाद। आजकल तुम लोग तो बहुत अच्छे आदमी हो, यूरिया का दूध पी लेते हो। अब पीते हो कि लोग पिलाते हैं तो भगवान ही जाने, ये हमारा देश है। गर्मी में तड़पता है जब पेड़, तब उसके अंदर जो सुगंध बाहर निकलती है। जब तक आदमी तपे नहीं तब तक आदमी के अंदर से सुगंध बाहर नहीं निकल सकती। आपको मालूम है बंबई में हापुस आम आते हैं, जितनी गर्मी पड़ती है उतना आम मीठा होता है। अभी तो किसानों के अंदर भी ऐसी लोभ की भावना पैदा हो गई, आम को तपने ही नहीं देते, उसको पहले ही तोड़ देते हैं जितना पके हो। और जैन तो खाते नहीं है, यदि बारिश हो जाए तो बोले कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो जितना तपता है वो उसमें उतनी मिठास होती है, मोगरा जितना तपता है उतनी उसमें सुगंध होती है। तो जीवन की ये सुगंध, फलों की ये मिठास, इसका नाम है भौतिक। क्या है तो भौतिक अर्थ हो गया भूतों से बना हुआ। तो वो कहते हैं भूत भी वही है और भौतिक भी वही है, लेकिन अंतर करो आप। एक मोगरे के पत्ते में, एक मोगरे के फूल में, योग वशिष्ठ में एक प्रकरण आता है ऐंदव सृष्टि प्रकरण। पानी डालते हैं, गन्ने के रस में जाके वो मीठा हो जाता है, नींबू के पेड़ में जाकर के वो खट्टा हो जाता है, करेले में जाके वो कड़वा हो जाता है। इसका नाम है भूत भौतिक। भूत हो गया पानी, करेले का कड़वा होना। बादाम देखो, ये जो इसके जो सृष्टि है इसका नाम है भौतिक। तो यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, सृष्टया जो है ना बहुवचन का रूप है, तम नौमी परमात्मानम। सच्चिदानंद विग्रह, कोशिश करो कभी देखने में, फूलों में वही मुस्कुराता है, आम के अंदर मिठास उसी की है। ऐसी कथा आती है, लिखा है, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत में, मदमेव मानम वीक्षज केशवा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने की इच्छा की, यदि आप मेरे से मिलने की इच्छा करते हैं तब आप अपनी गाड़ी अपने साधनों का उपयोग करते हैं, जब मैं आपके पास में मिलने जाऊंगा तो मैं अपने साधनों का उपयोग करूंगा, यही होता है ना बात। कभी यदि ईश्वर जीव से मिलने की इच्छा करे तो ईश्वर अपने साधनों का उपयोग करता है। तो ईश्वर का सबसे बड़ा साधन क्या है मालूम है? सब वैष्णव बैठे हैं केवल लड्डू खाने के लिए, डायबिटीज बढ़वाने के लिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य लिखते हैं, बंसिर योग माया। भगवान का सबसे बड़ा हथियार है योग माया। माया, हम माया की मुट्ठी में और माया भगवान की मुट्ठी में, भगवान का साधन है। भगवान को इच्छा हुई मिलने की, भगवान ने अपने साधन का उपयोग किया, बंसी का उपयोग किया। वहां लिखते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान के स्वरों में इतनी करुणा है, भगवान के स्वरूपों स्वरों में इतनी आत्मीयता है, जैसे माँ के सामने बच्चा रो रहा हो कभी और माँ ऐसी ताली बजाती है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को खुश करने के लिए उस ताली में कौन सा स्वर है, कौन सा ताल है, कौन सा झुनझुना बज रहा है उसमें। लेकिन माँ के हाथ की ताली ऐसे सुनते, चुटकी सुनते, ताली भी नहीं, चुटकी सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है। भगवान ने अपने साधन का उपयोग किया। तो महाप्रभु लिखते हैं सुबोधिनी में, बंसिर योग माया। और आप हैरान हो जाए, वल्लभाचार्य ने भगवान शंकर के लिए बताया शिवो वेदा। शिव तो वेद है। भागवत के नवम स्कंद के अंदर भगीरथ जी महाराज को आदेश होता है, धारई सती ते बेगम, गंगा भगवती को कहते हैं, हे भगवती गंगा, तेरे वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। तो वहां शंकर शब्द की व्याख्या आपको भागवत के नवें स्कंद में जैसी की है वैसा कहीं दुनिया में आपको नहीं मिला, नहीं मिल सकता आपको, देखना नवें स्कंद में जाकर के। शिव क्या है? शंकरस्तु आत्मा देही नाम, वहां शंकर ने वो रुद्र शब्द का प्रयोग किया, रुद्रस्तु आत्मा। रुद्र तो प्रत्येक प्राणियों की आत्मा है। और कैसा वहां दृष्टांत क्या दिया है वहां भागवत में मालूम है, नवमी स्कंद में, साटी इव तंतुसु, जैसे साड़ी में धागे होते हैं ऐसे ही भगवान शंकर जो है वो प्रत्येक प्राणी की आत्मा। जैसे साड़ी की आत्मा धागे हैं, इसी प्रकार इस नाम रूप आत्मक जगत की आत्मा अस्थि भाति और प्रिय है। इसलिए बोलते हैं घट नामना यथा पृथ्वी, पट नामना ही तंतवा। घट पृथ्वी के सिवाय कुछ नहीं। और देखो सब पृथ्वी बनने की तैयारी में। कवि ने लिखा माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए। कभी आप भगवान की पूजा करते हैं, महादेव को हजार कमल चढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि भगवान विष्णु पूजा करते हैं। हरिस्ते साहस्रम कमल बलि महाशाय, वो फूल चढ़ जाते हैं। रात को 10 बजे हम उन फूलों को उतारते हैं, तीसरे दिन देखते हैं कौन ऐसा कलाकार है जो इस मिट्टी से इतने सुंदर फूलों की रचना करता है, और फिर ऐसा कौन कलाकार है फिर मिट्टी को मिट्टी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है योगिना प्रत्यक्षम प्रति विषय न कारणम, किसी योगी की विषय के प्रति रुचि इसलिए नहीं होती कि वो आज के कमल में परसों होने वाली उसकी दशा उसको उसमें दिखाई पड़ती है। जो आज के कमल में परसों का कमल देख लेगा वो आज के कमल को छूने की इच्छा भी नहीं करेगा, क्योंकि परसों तुम भी उसके पास से जब गुजरोगे तो नाक में कपड़ा लगा के गुजरोगे। योगी आज ही नाक पे कपड़ा लगा के गुजरता है विषयों को देख, क्योंकि योगी की दृष्टि में कोई भविष्य नहीं, योगी की दृष्टि में कुछ अतीत नहीं, योगी की दृष्टि में सब वर्तमान है। ये दृष्टि उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार बोलते हैं जगन नामना चिदा भाती, जैसे धागा साड़ी के रूप में भास रहा है, मिट्टी घड़े के रूप में भास रही है, उसी प्रकार जगत के रूप में वह परमात्मा ही भास रहा है, उसके सिवाय भासने वाला कोई और है ही नहीं। अब बड़ी मजेदार बात है, आनंद भी वही लेता है, उसके सिवाय क्या है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है न तु सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। उस आत्मा के ही लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते, इसलिए उसको खुश करने की जगह हम उसको दुखी कर बैठते हैं। पहले समझे, महाभारत में एक जगह आता है सबसे अंत में कृष्ण कर्ण के पास में गए, कर्ण से कहा देख तू बड़ा अच्छा आदमी है। कृष्ण की एक खासियत थी वो अच्छे आदमी से हमेशा प्रेम करते थे। रोग से तकरार है, रोगी से कोई तकरार नहीं, रोग निकालने की कोशिश करते थे। भीष्म के पांव भी छूते थे और बाण मारने के लिए अर्जुन को उकसाते भी थे। इसलिए बहुत लोग कृष्ण के कैरेक्टर को समझ नहीं पाते। कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुआयामी व्यक्तित्व तो है। सोचो कि खाली लड्डू खाकर के उसको समझा जाए, संभव नहीं। गीता के बिना कृष्ण का व्यक्तित्व तो कैसे खिलता है। अर्जुन के जब सारथी बनते हैं और देखो कैसा आदमी था वो। अर्जुन ने कहा महाराज पिता महा तो महा भागवत में लिखा है समरे अमरन जय। ये द्रुपद का लड़का जब गया था ना उधर, जब ये अज्ञातवास में थे, उसने बोला था हम जाकर के कौरवों की सेना को जीत लेंगे और लड़ा कर लेंगे और फलाना कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ कोई सारथी होना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने उसको कहा देखो ऐसा है, ये जो ब्रियन नला है ना इजड़ा, क्योंकि गुप्त रूप में थे उस समय ये लोग, ये सारथी का काम बहुत अच्छा करता है। तो राजा को गुस्सा भी आया, अर्जुन का व्यक्तित्व ही ऐसा था, उसके हाव भाव, उसका रहन सहन। बुद्ध भिखारी थे लेकिन राजा भी उनके सामने ऐसे ही नतमस्तक हो जाते। आजकल के भिखारी यदि 10,000 रुपए मीटर कपड़ा भी पहन लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजा उनके सामने झुकने के लिए तैयार होगा। जबरदस्ती झुकाओ तो बात अलग, व्यक्तित्व तो ऐसा होता है, अंदर से संपन्नता ऐसी होती है। तो अर्जुन ने पूछा ये तो बात आदमी बहुत खतरनाक है, अभी तो जीतना बहुत मुश्किल है। क्या कृष्ण कैसा व्यक्ति थे देखो आज, वो बोलते तू उससे जा उससे पूछ तू मरेगा कैसे। बड़ी गजब की बात आप करते हो, अब उससे हम ये पूछे तुम कैसे मरोगे, क्योंकि जीतने का मतलब होता है जब तक भीष्म मरेगा नहीं तब तक महाभारत जीतेगा नहीं। और वो आदमी भी कितना सरल रहा, उस आदमी ने जाके पूछा और उसने क्या जवाब दिया ये कल बताऊंगा।